ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इन दिनों हम बात कर रहे हैं धर्म की। ये बात तो बिल्कुल हमारे सामने आ जाती है कि अध्यात्म का मार्ग ही वो मार्ग है जिसे हम वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जिसके हम हकदार हैं। हमें जीवन में खुशी मिल सकती है, शांति मिल सकती है और हमें वो प्यार मिल सकता है जिसे हम तलाश रहे हैं, क्योंकि ये हमारे अपने ही अंदर है। और अध्यात्म की जर्नी, अध्यात्म की जो यात्रा है, ये अंतर्मुखी होकर ही की जा सकती है, लेकिन उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है ध्यान। ध्यान की जहां बात आती है तो फिर ये देखा था कि मन जो है वो चंचल होकर इधर उधर भागता है और अभी तक हम मन पर ही केंद्रित थे, मन को ही दोष दे रहे थे। लेकिन अगर पिछली कड़ी आपको याद हो तो उषा बहन ने हमें क्लियरली बताया था कि मन से भी बढ़कर है बुद्धि जो विजुलाइज करती है, तो अगर उसे हमने कंट्रोल कर लिया तो मन पर अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। ध्यान से जुड़े कुछ और ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो आज समाज में बहुत प्रचलित है, उनको लेकर खूब कंफ्यूजन्स भी है, आपके मन में भी है, तो आप ही के उन सवालों का जवाब साथ मिलकर तलाशते हैं। और हमारा सौभाग्य हमारे साथ आज भी है सीनियर ब्रह्मा कुमारी उषा बहन, उनका स्वागत करते हैं। ओम शांति। उषा बहन, अगर हम पिछली कड़ी को देखते हैं तो जहां ये बात बिल्कुल अब समझ में आ जाती है कि बुद्धि को अगर विजुलाइजेशन को अगर रोक दिया तो मन कहीं नहीं जाने वाला, मन अपने आप वश में आ जाएगा, लेकिन जो हमने ये बात देखी थी कि कहीं विचार शून्य होने की बात थी कि ध्यान क्या है या प्रार्थना और ध्यान में क्या फर्क है, थोड़ा और आगे अगर हम बढ़े तो एक बात आती है कि मंत्रोच्चारण या चैंटिंग जो है उसमें बैठ के ध्यान करना, बैठना और मंत्रोच्चारण करते जाना और फिर ध्यान में लग जाना, वो भी बहुत जो है लोगों को फर्क तो पड़ रहा है जिंदगी में, लेकिन फिर भी वो एक वो रास्ता नहीं मिल पाता क्योंकि फिर मन उचाट हो जाता है, फिर छूटने लगता है वो जो प्रोसेस है। और ये समझ में आता है कि ध्यान जो है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस होना चाहिए।
ऐसा है कि मंत्र एक समय में बहुत उपयोगी था, एक समय था उसका भी, क्योंकि जब इनिशियली मन भटकना शुरू हुआ तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जरूर मंत्र उच्चारण ने हेल्प किया। क्योंकि मंत्र माना क्या, मन प्लस त्र, दो शब्द से बना है मंत्र, यानी मन को जो त्राण देने वाला, त्राण माना प्रोटेक्शन, तो मन को जो भटकने से प्रोटेक्शन देने वाला शब्द उसको कहा मंत्र। दूसरा, मंत्र शब्द से मंत्री शब्द निकला है, मंत्री माना सलाहकार, तो मंत्र माना सलाह, इट्स अ पीस ऑफ एडवाइस गिवन टू द माइंड ताकि वो भटके नहीं, इसलिए उसको एक प्रोसेस में लगा दिया गया। जैसे कि किसी को मंत्र दिया ओम नमः शिवाय जपो, अब ये एक मोनोटोनस प्रोसेस में जब मन को लगा दिया जाता है, अब ह्यूमन माइंड इतना हाइपर क्रिएटिव है कि उसको कभी भी कोई भी मोनोटोनस प्रोसेस जचती नहीं है,
वो उसके साथ साथ कुछ कुछ और चलने लगता है,
हाँ, उब जाता है, इसीलिए मन उबता है। अब मन उबता है तो भटकता है। और सलाह आज की दुनिया में किसी को अच्छी नहीं लगती। एक छोटे बच्चे को भी आप रोज सलाह दो ना उठ के कि बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, यही सलाह आप रोज उसको दो, चार दिन सुन लेगा, पांचवें दिन कहेगा पता है,
मालूम है मुझे,
आप लेक्चर नहीं दो, उसको लेक्चर लगता है। सलाह आज की दुनिया में जब कोई छोटे बच्चे को पसंद नहीं है, बार बार हम भी मन को सलाह देते रहे कि तुम ओम नमः शिवाय जप, वो उसको कहां तक पसंद आएगा, इसलिए उसको भी पसंद नहीं आता है। ये जिह्वा है, उसको भी रोज वैरायटी टेस्ट का खाना चाहिए, एक ही प्रकार की सब्जी रोटी दी जाए तो कितना दिन एंजॉय करेंगे, थोड़ा दिन खा लेंगे फिर पूछेंगे और कुछ है या नहीं है। मन का भोजन है चिंतन, उसको भी रोज एक ही प्रकार का चिंतन दो कि तुम ओम नमः शिवाय जपो, तो कहा जाता है ह्यूमन माइंड इज हाइपर क्रिएटिव, उसको हर रोज नए नए विचार चाहिए, और जब वो नए विचार नहीं मिलते हैं तो ये विचार में उब जाता है। तो थोड़ा दिन तो जप लेता है, इनिशियली अच्छा भी लगता है, फिर जैसे ही एक मोनोटोनस हो जाता है तो मन आत्मा को पूछता है, ये आत्मा और कुछ मिलेगा, ये यही है, आत्मा ने कह दिया ये तो गुरु मंत्र है, अब जिंदगी भर तुम्हें यही जपना है, जब समय मिले तब। अब मन ने समझ लिया आत्मा के साथ बहस करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये अभी मुझे भाता नहीं है, तो वो मुख को कहता है, हे मुख तू जपता रहे, मैं थोड़ा घूम के आता हूँ। तो मुख बोलता जाता है, हाथ में माला भी होंगी, मुख जप रहा है ओम नमः शिवाय, लेकिन मन देखो तो बाहर चक्कर काट रहा है। अच्छा, उसको किस बात में इंटरेस्ट आ रहा है अभी, कौन क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, क्या हो रहा है, यही बातों में इंटरेस्ट आ रहा है। यानी जैसे एक व्यक्ति को भी घर में अच्छा खाना न मिले तो बाहर का जंक फूड भी उसको अच्छा लगेगा, लेकिन वो जंक है, इट्स नॉट हाइजेनिकली प्रॉपरली प्रॉपर नरिशमेंट फॉर द बॉडी।
एक बार फिर वो बेलगाम हो गया ना।
तो ठीक इसी प्रकार अगर मन को भी ये जंक, कौन क्या कर रहा है, बाहर की बातों में इंटरेस्ट, लोग क्या कर रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, कहां दुनिया जा रही है, जिससे हमारा कोई मतलब नहीं, लेकिन मन को फिर वो जंक खाने की आदत पड़ जाती है। उसके बाद उसको अच्छे से अच्छी बातें भी दो तो भी मन क्या कहता
है, ढूंढ रहा होता है,
हाँ कहते इसमें मजा नहीं आ रहा है। इसलिए कई बार कई लोगों को आध्यात्मिकता बोरिंग लगता है, आध्यात्मिकता की बातें करो और वो क्या कहते हैं, अरे क्या बोरिंग सब्जेक्ट निकाला आपने। बोरिंग क्यों लगता है, क्योंकि उसको फालतू बातें चाहिए, लेकिन वो फालतू बातों में उन्नति कुछ नहीं है, प्राप्ति कुछ नहीं है, है ना। उसने क्या कहा, उसके घर में क्या हो रहा है, उसके घर में क्या हो रहा है, अब उससे मुझे क्या मिलना है, मुझे क्या बेनिफिट, आई एम जस्ट वेस्टिंग माई टाइम एंड एनर्जी।
बट जनरली व्हाट पीपल से, इनफैक्ट ये तो चलो घरों की बात तो बात की बात है, देशों में क्या हो रहा है,
हाँ,
उस जगह पे क्या हो, तो ये तो डिस्कशन है, ये तो हेल्दी डिस्कशन, क्रिकेट में क्या हो रहा है,
हाँ,
उसने वो ऐसे क्यों किया, देयर इज अ कंटीन्यूअस कन्वर्सेशन, इसका कोई मतलब नहीं,
मतलब
है।
नहीं है। और इसीलिए मनुष्य कई बार अपना समय इसी में ही बर्बाद करते हैं और फिर उसको अच्छी बातें भी अच्छी नहीं लगती है।
तो कहीं ना कहीं ये हमें देखना बहुत जरूरी है कि हम जो बात कर रहे हैं वो हमारे लिए कितनी बेनिफिशियल है। मुझे बहन यही एक बात और जो जुड़ती है, जब हमने पिछली बार बात की थी कि विजुलाइज नहीं करते हैं, अगर हम जब विचार आया उसको विजुलाइज नहीं किया तो तब जो है वो भटकने की बात नहीं है, मन आपस में आ जाएगा। लेकिन यही कई बार लोगों को क्या होता है, ध्यान में बैठे नींद आने लगती है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है, बहुत ज्यादा लोगों के साथ होता है ये।
तो नींद क्यों आती है, नींद इसीलिए आती है कि जब ध्यान में बैठते हैं आप अपने मन को क्रिएटिव चिंतन न दो, क्योंकि मन का स्वभाव है चिंतन करना। अगर आप उसको अच्छा चिंतन नहीं दो तो फालतू चिंतन करेगा, और फालतू चिंतन कर करके जब थक जाता है, जैसे एक बच्चा खेल रहा है थक गया तो सो जाएगा, तो मन भी एक छोटा बच्चा है, जब फालतू विचार कर करके थक जाता है तो सो जाता है, क्योंकि उसके पास क्रिएटिव विचार नहीं है। और आज मनुष्य के पास भी क्रिएटिव विचार नहीं है, इसलिए जब ध्यान में बिठाओ तो भाई अच्छे विचार तो आते नहीं है, फालतू विचार करने के लिए करना नहीं है तो रोकने का प्रयास करते, रोकने का प्रयास करते हो, दिन भर में फालतू विचार कर करके मन थक गया है, थक गया है तो नींद आती है। इसलिए जो दिशा देनी चाहिए वो दिशा देना नहीं आता है, एक क्रिएटिव मार्ग पर, सकारात्मक मार्ग पर उसको जो लगाना चाहिए वो नहीं आता है। यही स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक ज्ञान हमें दिशा देता है कि किस तरह हम मन को अच्छे से अच्छा चिंतन दें, क्योंकि मन की रुचि किस में है, उसको चिंतन चाहिए, और हम अगर उसको मोनोटोनस चिंतन देंगे तो उब जाना है, थक करके सो जाएगा, इसलिए उसको अच्छा, लेकिन अच्छा चिंतन इंसान के पास है नहीं। आज किसी को भी बिठा दिया जाए ना, 5 मिनट या 10 मिनट कुछ अच्छी बातें सोचो, 2 मिनट सोचने के बाद क्या करेंगे, अब आगे क्या सोचेंगे,
इट्स सो बोरिंग, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है,
क्या करना है। और किसी को भी बिठा दिया जाए, जितना मर्जी है नेगेटिव सोचो तो घंटों सोच सकते हैं, माना इतना मसाला है हमारे पास चिंतन करने के लिए नेगेटिव, लेकिन पॉजिटिव सोचने के लिए इतना मसाला नहीं है हमारे पास में। दिस इज वेयर स्पिरिचुअलिटी इज द मिसिंग डायमेंशन इन मॉडर्न लाइफ स्टाइल, क्योंकि आज मनुष्य सुबह उठता है तो उसका दिन कैसे शुरू होता है? सबसे पहले न्यूज़पेपर आया कि नहीं आया? अच्छा, न्यूज़पेपर के अंदर अच्छी कॉलम्स आती है, लेकिन इंसान वो अच्छी कॉलम्स नहीं पढ़ेगा। क्या हेडलाइंस है, और उसी से अपने माइंड को फीड करता है, उसी से अपने माइंड को नरिश करता है। अब जो इनपुट है वही तो प्रोसेस होगा, वही आउटपुट रहेगा, व्यवहार में, कर्म में, संबंध में
और विचारों में। बिल्कुल, विचार वही, क्योंकि इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जितनी भरी हुई है उसी से विचार उत्पन्न
होते। तो इसीलिए उसका दिन जो आ रहा, हम ये नहीं कहते कि न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना चाहिए, जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम जिस दुनिया में रह रहे हैं उसका इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास होना चाहिए, लेकिन डोंट लेट इट बी द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। सुबह सुबह अपने मन को कुछ हेल्दी नरिशमेंट दो, अच्छे विचार दो, और अच्छे विचारों का स्रोत कहाँ है? आध्यात्मिकता, दिस इज द ओनली सोर्स। आध्यात्मिकता हमें इतना अच्छे विचार तो क्या, लेकिन अच्छे खजानों का अधिकारी बना देगा।
बिल्कुल वही हम कह रहे हैं कि जिसके लिए हम हैं, जो हमारा हक है, वो हमें प्राप्त हो सकता है अध्यात्म के रास्ते।
मुझे कहानी याद आती है कि एक बार एक व्यक्ति था, बहुत गरीब था, और उसके पास एक जमीन का टुकड़ा था, लेकिन वो जमीन का टुकड़ा भी ऐसा था कि जिसके ऊपर कुछ निकलता नहीं था, उगता नहीं था। थोड़ी भेड़ बकरियां थी उसके पास, लेकिन उसका घर चलाने के लिए उसके ऊपर बहुत कर्जा हो गया था। तो एक दिन वो बैठे बैठे सोच रहा था कि ये जमीन का टुकड़ा कोई बेचूंगा तो भी लेगा नहीं, इतनी थोड़ी सी भेड़ बकरियां हैं, वो भी कोई अगर बेच दूं मैं तो भी मैं अपना कर्जा तो नहीं चुका सकता हूं, और अब मैं अपने परिवार को, घर को चलाऊं कैसे। बहुत उदास हो गया था, बहुत ये नर्वस हो गया था कि मैं क्या करूं अपने जीवन में, मैं कुछ नहीं कर पाया, मेरे पास कुछ नहीं है। अचानक उसने देखे कि तीन चार लोग उसके पास आ रहे हैं दूर से। वो लोग गवर्नमेंट के लोग थे, आकर के कहने लगे, ऐसा है कि हमारे सर्वे के हिसाब से हमें पता चला है कि ये जमीन का टुकड़ा आपका है? तो बोला हाँ मेरा है। तो इसके नीचे तेल है और हम डिग करना चाहते हैं। तो कहा कर लीजिए आप, वैसे भी खाली टुकड़ा तो कुछ फायदा नहीं है। तो उन्होंने डिग किया तो सचमुच इतना तेल कि रोज के 80 बैरल तेल निकले, इतना तेल था। तो उन्होंने उसको कहा, वो व्यक्ति को, कि ये जमीन का टुकड़ा हम खरीदना चाहते हैं और उसके लिए हम तुम्हें करोड़ों रुपया देंगे। भावार्थ ये है कि वो व्यक्ति के पास जहाँ वो खड़ा था उसके नीचे इतना खनिज था,
उसे खुद ही नहीं पता था,
उसको पता नहीं। और जब तक पता नहीं था तो गरीब महसूस करता था, और गरीब महसूस करता था, उदास हो गया था जीवन में, जैसे होपलेस हो गया था। ठीक इसी तरह हमारे भीतर भी अथाह क्षमता है, लेकिन वो क्षमता जब तक हमें पता नहीं है तब तक कई बार कई लोग सोचते हैं हमारे जीवन की क्या वैल्यू है, क्यों जिए, इतना उदास हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं। लेकिन यही स्पिरिचुअलिटी का काम है कि वो व्यक्ति के अंदर की एक जागृति ले आता है कि तुम्हारे पास अथाह खजाना,
एम्पावरिंग हो जाता है ना, सशक्तिकरण की,
सशक्तिकरण। और जब व्यक्ति वो स्पिरिचुअल पॉवर्टी जो महसूस कर रहा है उसको ओवरकम कर लेता है और उस ट्रेजर्स को डिग करके जब बाहर ले आता है जीवन के अंदर, उसको अपने संबंधों में, व्यवहार में प्रवाहित होने देता है, तब उसका जीवन कितना सुंदर बन जाता है। ये आध्यात्मिकता है कि जो हर इंसान को वो डिग करने के लिए प्रेरणा देता है, और डिग करके वो अपने ही अंदर से वो शक्तियों को बाहर ले आए और उस शक्तियों को अपने जीवन में लगाएं और उस शक्तियों के आधार पर जीवन जिए।
बिल्कुल, बहुत सुंदर बात। तो तय हमें ही करना है कि हम वो डिगिंग के लिए तैयार है या नहीं है। या फिर हम, ऐसा भी हो सकता था कि वो मना कर देता, वो जो व्यक्ति था वो कहता कि नहीं मैं तो नहीं दूंगा।
हाँ।
मतलब वो तो यही, यहाँ हमारा डिसीजन है कि हमें ये तो इन्फॉर्मेशन मिल गई है कि जो सारा खजाना है वो हमारे ही अंदर है, वी आर रेडी टू डिग इट और नॉट। That makes actually lot of difference. ये हमारे अपने, अगेन उषा बहन बात यही आ जाती है, डिसीजन हमारे अपने हाथ में आ सकता है।
और ये डिगिंग एक्चुअली मेडिटेशन, मेडिटेशन माना इट्स अ जर्नी इनवर्ड्स, कि हम जब भीतर जाते हैं डिगिंग करने के लिए, भीतर जाते हैं, यही तो ध्यान प्रक्रिया है। जो भीतर से अपनी शक्तियों को बाहर ले आना है। ध्यान के सिवाय ये कभी नहीं प्रैक्टिकल है। इसलिए आध्यात्मिक खजानों को भी बाहर लाने का माध्यम ध्यान है।
बिकॉज ये डिगिंग जो है वो दैट मींस ध्यान। ध्यान हम अपने अंदर जाके, यहाँ एक प्राणायाम जो है, योग साधना की जो बात होती है, योग क्रियाओं की बात होती है, उसमें भी कहा जाता है कि आप साधना में हैं, आप योग में हैं, आप मेडिटेशन में हैं, और प्राणायाम करते हुए भी आप जो है आप मेडिटेट कर सकते हैं। यहाँ फिर वो कंफ्यूजन शुरू हो जाता है।
ऐसा है कि प्राणायाम अच्छी चीज है, शरीर के स्वास्थ्य के लिए बहुत उत्तम माना जाता है ना, लेकिन ध्यान मन के स्वास्थ्य के लिए है। तो दोनों अगर जीवन में आ जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है। इसलिए कंफ्यूजन में आने के बजाय दोनों चीज को अपना सकते,
लेकिन दोनों एक साथ करना संभव है?
बिल्कुल संभव है, कर सकते हैं। शुरू में सुबह उठो, आप मेडिटेशन कर लो, अगर मेडिटेशन नहीं लग रहा है प्राणायाम से अपने आप को फ्रेश कर लो, माइंड को रिफ्रेश कर लो। क्या होता है कि जब, जैसे कहा, ध्यान में बैठते हैं तो कईयों को नींद आती है, तो उस समय थोड़ा प्राणायाम कर लेते हैं, यानी वो फ्रेश ऑक्सीजन, प्राणवायु अपने अंदर भर लेते हैं, तो उससे हमारा ध्यान अच्छा लगता है। तो इसलिए दोनों चीज जीवन के अंदर जरूरी है, एक शरीर के, हाँ, बैलेंस जरूरी है, एक शरीर के बैलेंस के लिए, एक मन के बैलेंस के लिए। क्योंकि हेल्दी माइंड इन अ हेल्दी बॉडी, बॉडी हेल्दी रखने का पूरा प्रयत्न करें लेकिन माइंड को हेल्दी नहीं बनाया तो क्या
फायदा नहीं। बिल्कुल, मन चंगा कहते हैं वो सबसे ज्यादा जरूरी है। यहाँ एक बहुत बात क्लियर हो जाती है कि प्राणायाम करते हुए भी हम ध्यान कर सकते हैं, लेकिन ध्यान जो है वो विचारों से ही जुड़ता है, कि मन की जो खुराक है वो चिंतन है, आपने बताया, तो मन को वो खुराक देनी बहुत जरूरी है, लेकिन सही दिशा में। यहाँ जब हम सही दिशा की बात आती है, तब एक और ध्यान से जुड़ी बात है कि इमेजिनेशन। कहीं हम जब ध्यान, जो हम राजयोग की बात करते हैं, तो ये भी लगता है कि कहीं हम इमेजिन तो नहीं करने लग गए हैं, इमेजिनेशन, या हम सोचना तो पड़ता ही है, क्योंकि अगर हम परमात्मा की बात करते हैं, परमधाम जाने की बात करते हैं, तो एक सोच तो आती ही है, तो वो और इमेजिनेशन में क्या फर्क?
ऐसा है, इमेजिनेशन विजुअलाइजेशन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। इमेजिनेशन किसको कहते हैं और विजुअलाइजेशन किसको कहते हैं, उसका एक उदाहरण मैं दूं कि आज मैं अगर कहूं कि आप अपने माता पिता को याद करो, सहज है या मुश्किल है?
बिल्कुल आसान,
आसान है। माता पिता कहा तो तुरंत उनका चेहरा सामने आ गया, उनके विषय में आप बहुत सारी बातें सोच लेते हैं, और जब सोच रहे होते हैं और कोई अचानक आकर के पूछता है क्या कर रहे हो, तो आप कहेंगे मैं अपने माता पिता को याद कर रही थी। ये नहीं कहेंगे मैं माता पिता के विषय में इमेजिन कर रही थी। इमेजिनेशन उसको कहते हैं जिसका अस्तित्व है ही नहीं और उसके विषय में सोचते हैं, तो वो इमेजिनेशन,
आप अपनी कल्पना से क्रिएट।
हाँ, लेकिन जिसका अस्तित्व है या था समझो और उसके विषय में सोचते हैं, तो वो इमेजिनेशन नहीं, वो विजुअलाइजेशन हो जाता है। तो आत्मा का भी अस्तित्व है, परमात्मा का अस्तित्व भी है, और फिर उसके विषय में हम सोचते हैं, तो वो इमेजिनेशन नहीं, वो विजुअलाइजेशन है। इसीलिए उसको, ध्यान को इमेजिनेशन नहीं कह सकते हैं, क्योंकि परमात्मा का अस्तित्व भी है, उसके गुणों के विषय में हम चिंतन करते हैं, आत्मचिंतन करते हैं, परमात्मा चिंतन करते हैं, ये सब विजुअलाइजेशन से कनेक्टेड हो जाता है।
बिल्कुल, और लेकिन हम खुद कैसे समझें कि हम विजुलाइज कर रहे हैं या हम कहीं इमेजिनेशन में चले गए हैं?
हाँ, ये जरूर है कि क्लैरिटी होनी चाहिए। जैसे एक बच्चा होता है, उसने अपने पिता को देखा नहीं है, लेकिन जब माँ समझ देती है कि बेटा तेरा पिता ऐसा था ऐसा था, तो उसके बाद वो विजुलाइज कर सकता है और उसके पिता को याद कर सकता है कि वो कैसा हो सकता है, वो चित्र उसके सामने स्पष्ट हो जाता है कि मेरा पिता ऐसा वीर था, ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था, तो भी उसको इमेजिनेशन नहीं कहा जाता, क्योंकि वो था ऐसा, है ना। ठीक इसी तरह अगर आत्मा की समझ यथार्थ हो, परमात्मा की समझ यथार्थ हो, बुद्धि के अंदर ज्ञान प्राप्त हो जाता है, आत्मा का, परमात्मा का, परमधाम का, सब बातों का जब ज्ञान स्पष्ट हो जाता है और उसके बाद हम चिंतन करते हैं तो वो इमेजिनेशन है, वो विजुअलाइजेशन।
अच्छा, यहाँ जब कॉन्वर्जेशन की बात है, जब हम कम्युनिकेशन की बात है, परमात्मा के साथ बात की, तब यहाँ बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को कि मैं इमेजिन कर रहा हूँ, वो मुझसे कैसे कॉन्वर्जेशन करेंगे, क्या मुझे हर रोज जीवन में, जैसे हमने पहले भी कई बार बात की है जब परमात्मा के स्वरूप की बात कर रहे थे, उनसे बातचीत करने की बात, कि वो पूरे दिन में मुझे मेरे सवाल का जवाब देंगे, मुझे मेरा जवाब कब मिलेगा, क्या मुझे सुनने लग गया है, क्या मैं इमेजिन कर रहा हूँ ये चीजें, ये एक
उसमें ऐसा है कि उसके बातों को समझने के लिए, जैसे कोई व्यक्ति को याद करता है और थोड़ी देर में उसका फोन आ जाए तो हम क्या कहते हैं, अरे अब भी आपको याद कर रहे थे। लेकिन ये कभी कभी अनुभव होता है, सबके साथ नहीं, किसी किसी के साथ, और उसको हम कहते हैं इट्स अ टेलीपैथिक कनेक्शन, कि जब वो दोनों व्यक्ति की
फ्रीक्वेंसी
मैच हो गई तो रिस्पॉन्स मिलता है, अनुभव होता है। याद तो हम कई लोगों को करते हैं लेकिन किसी किसी के साथ ये फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है, और जब फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है तो इतनी खुशी होती है कि हमने उसको याद किया और तुरंत रिस्पॉन्स मिला, ये अनुभव होता है। लेकिन ये अनुभव सबके साथ नहीं है, जिसके साथ फ्रीक्वेंसी मैच हुई इसी के साथ है। ठीक इसी तरह मेडिटेशन माना भी एक टेलीपैथिक कनेक्शन विद गॉड, और जब ये टेलीपैथिक कनेक्शन है तो उसके लिए भी फ्रीक्वेंसी मैच होना बहुत जरूरी है। अब उसके साथ फ्रीक्वेंसी मैच करने के लिए या उसको मेरे लेवल तक आना पड़े या मुझे अपने कॉन्शियसनेस लेवल को उसके लेवल तक ले जाना पड़े। अब वो मेरे लेवल तक आए ये संभव नहीं है, इसलिए मुझे ही अपने कॉन्शियसनेस लेवल को ऊपर उठाना पड़ेगा। और जब ऊपर उठाने की बात करते हैं तो माना बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियस, और सोल कॉन्शियस बनने के लिए रटना नहीं है कि मैं आत्मा हूं, लेकिन जैसे ही हम आत्म के स्वरूप में स्थित होते हैं, आत्मा के भाव में स्थित होते हैं, तो वो सातों गुण
स्वतः ही
आने लगते हैं। और उस कॉन्शियसनेस में हम रह करके सारा दिन कर्म करें तो वो परमात्मा का भी रिस्पॉन्स हमें मिलता है, और वो जब मिलता है तो उसकी पहचान क्या कि एक फ्लैश, और ये महसूस होता है कि ये मेरे अपने विचार नहीं है, लेकिन ये जैसे एक कहीं से मुझे प्राप्त हो रहा है। और उस समय इतनी एक लाइटनेस की फीलिंग होती है, और उस समय कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट्स नहीं कि इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जैसे राइट, दिस इज व्हाट आई वाज थिंकिंग अबाउट, दिस इज व्हाट आई वाज, और ये बात मुझे पहले क्यों नहीं सूझी, सो इट्स जस्ट कमिंग लाइक अ फ्लैश, और वो जैसे हुआ ही पड़ा है।
राजयोग जो है वो कहाँ से शुरू हो जाता है और किस उम्र तक जो है वो जा सकता है?
वो कितनी भी छोटी उम्र से शुरू हो जाए उसके लिए कोई एज नहीं है, और अंत तक चल सकता है। इसलिए इसको सहज राज योग, कि जहाँ हम अपने इंद्रियों के ऊपर राज्य प्राप्त करते हैं, अपने मन को वश करते हैं, उसको एक दिशा देते हैं और अपने जीवन को एक श्रेष्ठ दिशा के तरफ ले जाते हैं, तो वो अंत तक चलती है। इट्स अ वे ऑफ लाइफ।
लेकिन जो शुरुआत करने की बात है, जो इनिशिएट करने की बात है, और फिर उसे अभ्यास की बात है, वो कितनी इम्पोर्टेंट हो जाती है?
वो हर एक के अपने ऊपर है कि उसके अंदर सीखने की या करने की इंटेंसिटी कितनी है, वो हर एक के अपने अपने है। और उसके लिए उसके अंदर पॉजिटिव फीलिंग्स जनरेट करना, और उस पॉजिटिव फीलिंग्स के साथ ही आगे बढ़। अगर नेगेटिविटी ज्यादा है तो उसको नेचुरल है, थोड़ा वक्त ज्यादा लगेगा। जितना पॉजिटिव को ले आ सकता है उतना सहज रास्ता उसका क्लियर हो जाता है।
निरंतरता वो कितना आवश्यक हो जाता है?
निरंतर करने के लिए नेचुरल है, जितना टाइम पीरियड, वो जैसे एक्सरसाइज है, कोई फिजिकल एक्सरसाइज करता है, अभी उसकी सांस फूल रही है तो नेचुरल है, थोड़ी करेगा, लेकिन जैसे जैसे अभ्यास करता जाता है वो समय बढ़ाता जाता है। ठीक इसी प्रकार राजयोग भी मन को जैसे जैसे वश करते, पहले इनिशियली थोड़ा समय होता है, लेकिन फिर धीरे धीरे टाइम इंक्रीज होता जाता है, और फिर हम जितना ज्यादा भी करना चाहे कर सकते हैं।
तो जब आनंद की अनुभूति होने लगती है तब
उसमें तो कितना समय बीत जाता है पता ही नहीं चलता।
उसे भाई आज हमने जो बातचीत की वो बहुत सुंदर बातें सामने आई हैं, और कहीं ना कहीं ज्ञान समझते हुए उसके अभ्यास में जो मुश्किलें आ रही थी, क्योंकि जहां हम समझ लेते हैं वहां हमें लगता है कि दिस इज द राइट वे, बट द मोमेंट इट स्टार्ट्स इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तब अड़चनें आती जाती हैं, और फिर वो कन्फ्यूजन जो आज के समाज में इस दौर में है ही वो हर एक के लिए अपना रास्ता हमें खुद चुनना है। आज की इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अमशा।
थैंक यू अमशा।
अपने सभी दर्शकों से, परिवार के सभी सदस्यों से यही कहना चाहेंगे कि ध्यान का रास्ता हमने अपनाया है, मेडिटेशन को हमने अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया है, तो आइए उसे सही परिपेक्ष में लेकर ही करें, और निरंतरता अभ्यास जो है वो सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण बात है वो यही। सबके लिए हर मेडिटेशन टेक्निक काम नहीं कर सकती है, लेकिन राजयोग, सहज या राजयोग एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसा तरीका है जो बिल्कुल, एक तो सबसे बड़ी बात है कि परमात्मा द्वारा दिया गया एक पूरा ज्ञान है जिसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, किसी भी उम्र में शुरू किया जा सकता है और किसी भी उम्र तक जा सकता है। ये सिर्फ ये नहीं कि सुबह और शाम बैठकर करना है, बल्कि मेडिटेटिव लाइफस्टाइल है, हर क्षण हम ध्यान में रह सकते हैं, ये हमें अपने जीवन में उतारना है। कोई ऐसी बात, कोई ऐसा सवाल जो आपके दिल में है, आप हमसे पूछ सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर फोन पर भी संपर्क कर सकते हैं।
If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your